दिन भर तारीख 14 नवंबर दिन सोमवार। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। पाकिस्तान का दावा, भारतीय फायरिंग में 7 सैनिकों की मौत। नोट बंद करने के फैसले के बाद भारत में लोगों की दिक्कतें बरकरार।
घोड़े के बच्चे काफी आए हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि भैया नोट का प्रॉब्लम है, एक्सचेंज नहीं हो पाया है।
फैसला सही या गलत मामले पर राजनीति हुई तेज।
ये आपकी ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है।
विकीलीक संस्थापक जूलियन असांज से लंदन में चल रही है पूछताछ, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान का दावा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना की तरफ से की गई फायरिंग में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना के बयान में कहा गया है कि नियंत्रण रेखा के पास भिम्बर सेक्टर में दोनों तरफ से की गई फायरिंग में इन सैनिकों की मौत हुई है। फायरिंग की एक घटना में इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत पिछले 10 सालों में से ज्यादा समय में पहली बार हुई है। सितंबर में उड़ी सैनिक कैंप पर हमले में 18 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि आज शाम दिल्ली में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने विमुद्रीकरण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि गरीब लोग चैन की नींद सो रहे हैं, वहीं कुछ लोग परेशान हैं जिनके पास गैर कानूनी पैसा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच केंद्र सरकार ने बैंकों से निकासी की सीमा बढ़ा दी है और अगले 10 दिन तक पेट्रोल पंप, रेलवे और हवाई टिकट और अन्य जरूरी बिल और टैक्स चुकाने के लिए पुराने नोट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और दक्षिणपंथी मीडिया प्रमुख को अपनी टीम में अहम भूमिका सौंपी है। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन रायन स्प्रीबस को चीफ ऑफ स्टाफ चुना है और वो कांग्रेस और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेंगे। वहीं ब्रेबार्ट न्यूज नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष रहे स्टीफन बैनन को ट्रंप ने अपना प्रमुख रणनीतिकार चुना है। बयान में कहा गया है कि उच्च योग्यता वाले प्रीबस और बैनन ने ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के लिए मिलकर अच्छा काम किया। विश्व जलवायु संगठन ने कहा है कि 2016 का साल अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे गर्म साल रहेगा। मोरक्को में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक में ये ऐलान किया गया। मोरक्को में कई देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पर्यावरण संबंधी घोषणा के असर का जायजा ले रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि पर्यावरण में बदलाव एक धोखा है। वहीं कल अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। आपके साथ हूं मैं नितिन श्रीवास्तव, नमस्कार। कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे पुराने नोटों के बंद होने और नए नोटों को शुरू करने की मुहिम पर मची हाय तौबा पर, लेकिन सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान सीमा की। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि रविवार रात विवादित कश्मीर में भारतीय सेना के साथ हुई झड़पों में उसके 7 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक ये झड़पें लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा भी है। दोनों देशों की सीमाओं पर 29 सितंबर के बाद से तनाव बढ़ा है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कथित चरमपंथियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। सोमवार के पाकिस्तानी सेना के दावों पर मैंने आपसे थोड़ी ही देर पहले बात की इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता हारून रशीद से।
जी, पाकिस्तानी सेना ने ये आज दोपहर एक बयान जारी किया था जिसमें उनका कहना है कि कल रात गए भिंबर सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीरी इलाका है वहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने बगैर किसी वजह के फायरिंग की है जिसमें उनके 7 सिपाही जो हैं वो हलाक हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले इन सिपाहियों की तस्वीरें भी पाकिस्तानी फौज ने जारी की हैं, मजीद तफसील भी बताई है। और जो पाकिस्तानी सेना के सरबराह हैं जनरल राहिल शरीफ, उन्होंने जेहलम में इन में से 2 सिपाहियों की जो नमाज जनाजा है उसमें भी शिरकत की है। फिर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और इसकी मजम्मत की है, कंडेम किया है। और उनका ये आरोप था कि इंडिया जो मुसलसल उड़ी पर हमले के बाद से जो तनाव बनाए हुए है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो इसका कारण कश्मीर के अंदर जो भारतीय कश्मीर है उसमें जो अनरेस्ट चल रहा है उससे दुनिया की तवज्जो हटाने की एक ये कोशिश है।
जी हारून साहब, जैसा आपने बताया कि खुद पाकिस्तानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने उनके जनाजों में जो है शिरकत की और एक तरह से पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज किया है कि 7 उनके सैनिकों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में दोनों भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर ये आरोप लगाते रहे, एक्यूज करते रहे एक दूसरे को LOC पर ज्यादा अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट का। क्या आपको लगता है कि एकदम से जो एक्टिविटीज है वो कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्या ये थोड़ा सा अलार्मिंग सा लगने लगा है क्या?
जी बिल्कुल, लगता तो यही है। ये पहली बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सिपाहियों के मरने का वाकया है। इससे पहले अगर आपको याद हो, जो जब भारत ने दावा किया था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तानी कश्मीर में, तो उसमें भी 2 सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान के। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का ये आरोप है कि जो भारत की तरफ से फायरिंग हो रही है उसमें अब तक उड़ी के वाकये से लेकर कोई 26 आम नागरिक जो हैं वो इन इलाकों में रहने वाले वो भी मारे गए हैं। तो ये कशीदगी तो काफ़ी एक लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट चल रहा है जब से उड़ी का वाकया हुआ है, और ये आज का सबसे बड़ा वाकया है जिसमें पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अगर ये इसी तरह टेंशन चलती रही और इसे कम न करने की कोशिश की गई तो यहाँ लोग ये भी शक और जता रहे हैं कि हो सकता है कि मामला दोनों देशों के कहीं हाथ से ही ना निकल जाए।
तो पाकिस्तानी सेना के इन दावों पर कि भारतीय सेना की फायरिंग में उसके 7 जवान मारे गए हैं, ये थे इस्लामाबाद से हारून रशीद। लेकिन भारतीय सेना या सरकार की तरफ से अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। मैंने हारून से बात करने के बाद श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से ताज़ा सूरत हाल ली।
जी देखें, जहाँ तक नॉर्दर्न कमांड का ताल्लुक है, जो कश्मीर की LOC और जम्मू में जो भी LOC का क्षेत्र है उसको कमांड करती है, उनके प्रवक्ता से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि मच्छल सेक्टर में 9 नवंबर को भी फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था और उसमें हवलदार सतनाम सिंह की मौत हो गई थी, एक भारतीय सैनिक मारा गया था। तो उसके बाद इनका कहना है कि पाकिस्तान ने रुक रुक कर कई बार जो है सीज फायर वायलेशन किया और कल रात भी ऐसा ही हुआ जिसका जो है उचित जवाब दिया गया। लेकिन कतन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनके जवाब में पाकिस्तानी सोल्जर्स का कोई ऐसा नुकसान हुआ है।
रियाज, ये बताएं कि लगातार हर 4 से 5 दिन पर ऐसी खबरें आती हैं। मैंने अभी हारून रशीद से इस्लामाबाद ने भी यही सवाल पूछा था कि या तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के क्लेम्स होते हैं या इंडिया की तरफ से कहते हैं कि साहब अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही थी, जवाबी कार्रवाई की गई। तो ले देखिए, जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो खासा संवेदनशील इस वक्त माहौल हो चुका है। वहां पर क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई पर? और आज तो ये 7 के जो दावे आए हैं पाकिस्तान से, ये तो काफी बड़ा फिगर है।
जी देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जो डर और खौफ का माहौल था, जिस तरह से भारतीय प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पे हजारों लोगों को जो है वो डिसलोकेट किया था, वहां से निकलने के लिए कहा था, उस तरह की स्थिति अब तो नहीं है, क्योंकि लोग जो है खुद भी प्रशासन को पता चले बगैर खुद भी जाते हैं, उनकी फसलें हैं, उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, तो वो एक अलग सूरत हाल है, वो तो जम्मू और पंजाब के बॉर्डर पे है। लेकिन जहां तक कश्मीर की LOC का ताल्लुक है, यहाँ पे पॉपुलेशन में इस तरह का कोई जो है पैनिक नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके करीब 27 किलोमीटर की पट्टी में आबादी बिल्कुल करीब नहीं है जिस तरह से कि जम्मू के बॉर्डर में है। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 29 नवंबर को हुई थी, और उसके बाद खुद आर्मी का ये मानना है कि कोई 99 बार जो है पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया है, उसमें से 83 बार जम्मू क्षेत्र में हुआ है 83 टाइम्स, और 17 बार जो है कश्मीर फ्रंटियर पे हुआ है। और इसमें सबसे वर्स्ट वायलेशन जो आर्मी का कहना है वो 1 नवंबर को हुई थी, जिसमें 8 लोग लोग मारे गए थे जिसमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं भी थी और 22 लोग इंजर्ड हुए थे। तो कुल मिलाकर हमने जो बात की बीएसएफ के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी, उनका कहना है कि 17 पाकिस्तानी पोस्ट जो है उनको नुकसान पहुंचा है जब जब जवाबी कार्रवाई की गई।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
तो 500 और 1000 रुपए के नोटों को खत्म करने की सरकारी घोषणा के करीब एक हफ्ते बाद भी एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, शहरों और गांवों से पैसे न मिलने के कारण शिकायतें और उससे होने वाली असुविधाओं की रिपोर्टें आना जारी हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष की एक संयुक्त रणनीति तय करने के लिए बैठक भी हुई आज। माना जा रहा है कि 16 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीत सत्र शोर शराबे वाला हो सकता है। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
शहरों और गांव में लोग परेशान हैं, कहीं एटीएम नहीं चल रहे हैं तो कहीं उनमें पैसे नहीं हैं। अगर पैसे हैं तो वो नए 2000 के नोट के लिए अपडेट नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि उसे लोगों की असुविधा का एहसास है, लेकिन इससे देश को फायदा होगा। उधर कालेधन के मुद्दे पर विपक्ष की संयुक्त रणनीति तय करने के लिए आज एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस, वामदल और तृणमूल के नेता शामिल हुए। बैठक से बाहर निकलकर जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने कहा,
कैसे पूरी पार्लियामेंट में कौन कौन मुद्दे उठाएंगे, हम लोग वो है। एक मुद्दा ये भी है, जुडिशरी का भी है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेकारी का है, करप्शन का है, सब है।
उधर रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की भी आज एक अहम बैठक हुई। नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में थे, जहां एक रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के सरकारी कदम से बेईमान लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान भारत को जेल बनाने वाले लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं।
इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। मुझे
आज बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने एक ही वक्त अलग अलग सरकार के कदम के खिलाफ हमला बोला। मायावती ने कहा,
भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है।
उधर केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के कदम से भ्रष्टाचारियों को ताकत मिलेगी।
जो ये नोटबंदी की स्कीम प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, इस नोटबंदी की स्कीम ने भ्रष्टाचारियों के लिए और काला बाजारियों के लिए टॉनिक का काम किया है। कल वो प्रधानमंत्री जी शरद पवार जी का आशीर्वाद लेके आए हैं काला धन से लड़ाई लड़ने के लिए, इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा और सरकार के नजदीक कुछ लोगों को इस कदम के बारे में पहले से ही जानकारी थी।
मोदी जी, काला धन तो सच में आपके चंद सूट बूट वाले दोस्तों के पास है जो लाइन में खड़े ही नहीं। क्या कारण है कि मोदी जी का कोई उद्योगपति दोस्त, कोई उनकी सरकार का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, कोई भाजपाई नेता बैंकों के लाइन में खड़े नहीं जबकि पूरा देश खड़ा है?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार को लोगों की तकलीफों का अंदाजा ही नहीं है।
पहले कहा कि इतने दिन की केवल परेशानी है, फिर कहा कि एक हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा और अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में और कहा कि अभी 50 दिन और लगेंगे।
उधर सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की हैं। 500 और 1000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल सरकारी बिल देने के लिए 24 नवंबर तक किया जा सकेगा। एक दिन में अब आप बैंक से 24,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। जिन एटीएम को अपडेट किया जा चुका है उनमें से रोज आप 2,500 रुपए तक निकाल सकते हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
जैसा विनीत ने भी कहा कि आम लोगों को हो रही हैं खासी दिक्कतें, आज उसी तरह की एक दिक्कत का जिक्र करेंगे बिहार का, जहां प्रसिद्ध सोनपुर मेला सज धज कर तैयार है। लोग भी उमड़ रहे हैं, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। नोट बंद होने का इस सोनपुर मेले पर क्या असर हुआ है, सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट में।
सोनपुर मेले के बारे में कहा जाता है कि इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ मिलता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान एक बड़े पशु मेले के रूप में रही है। नोटबंदी की घोषणा का असर इस मशहूर मेले पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोनपुर के ओम प्रकाश सिंह के बागान में भी घोड़ा बाजार सस्ता है। आज दोपहर जब उनसे मुलाकात हुई तो वे मायूस दिख रहे थे।
पिछले बार की तरह इस बार खरीदारों में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है नोटबंदी की वजह से, लेकिन घोड़े के बच्चे काफ़ी आए हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि भैया नोट का प्रॉब्लम है, एक्सचेंज नहीं हो पाया है, यही सब प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। चूँकि पिछले साल आज के दिन करीब 30-40 बच्चे बिक जाते थे, अभी तक सुबह से एक भी बोहनी नहीं हुई है।
छपरा जिले के आमी के भोला राय ओम प्रकाश सिंह के बागान में 4 घोड़े लेकर पहुंचे हैं। भोला के मुताबिक खरीदारों की दिलचस्पी कम होने के कारण अपने घोड़ों की कीमत उन्हें घटानी पड़ी है। घोड़ा बाजार से थोड़ी दूर पर लगने वाला गाय बाजार लगभग वीरान पड़ा है। लोगों के मुताबिक बीते सालों में यहां पूर्णिमा वाले दिन करीब 200 गायें आराम से देखी जा सकती थीं, लेकिन आज दोपहर यहां पर बमुश्किल दर्जन भर गायें ही मौजूद थीं। वैशाली जिले के लालगंज से आए पशु व्यापारी सुजीत कुमार बताते हैं,
मेला सुनसान दिख रहा है इसलिए कि पैसा के बहुत माने कोई ले नहीं रहा है। हजारिया 500 का हम लोग गाय खरीद ले रहे हैं, लाने जा रहे हैं तो वहाँ कोई नहीं दे रहा है कि नए काल नोट लेके आइए तो देंगे। इस कारण से गाय यहाँ बहुत कम है और नहीं कोई ले रहा है और न हम लोग कोई दे रहा है, हम लोग इसीलिए बहुत परेशान है।
पशु बाजार के साथ साथ नोटबंदी का असर मेले में लगने वाले दूसरे दुकानों पर भी दिखा। पटना के विजय कुमार हर साल मेले में चूड़ियों की दुकान लगाते हैं। उन्होंने बताया कि बिक्री पहले के मुकाबले 1/4 से भी कम रह गई है। मेला घूमने आने वालों में से भी कई लोग इस बार कम पैसे लेकर मेला पहुंच रहे हैं। मेला देखने पहुंचे अर्जुन पासवान ने बताया,
बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत दिक्कत।
हाँ, मेले के हिसाब से क्या दिक्कत हुई है, कितना खरीदने का पहले सोचे थे?
मान लीजिए कि उस समय खरीदने के लिए 10 वर्ष पहले 2000 रुपया लाते थे, आज 1000 रुपया के अभी चेन लाए हैं तो नहीं पुर रहा है।
अगर रोड बंद नहीं हुआ होता तो क्या सोच कर रखा था, कितनी खरीदारी करते आप?
नहीं बंद रहते तो बहुत 1000 और बढ़ के खरीदारी करते।
और क्या मेले पे क्या असर देख रहे हैं नोटबंदी का आप?
नहीं बहुत असर देख रहे हैं कि लोग घूमते जा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं रहे हैं।
हालांकि मेले में बेतिया से आए चंदर शर्मा जैसे लोग भी मिले। चंदर को नोटबंदी के कारण कोई परेशानी अब तक नहीं हुई है और ना ही उन्होंने अपना मेला बजट ही कम किया। वहीं मेले के आसपास के 2 बैंकों और एटीएम्स के बाहर आज सुबह से ही भारी भीड़ जुट गई थी। मनीष शांडिल, BBC सुन।
बहरहाल सोमवार को गुरु नानक देव के जन्मदिन के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहे, जहां कहां एटीएम खुले रहे वहां पर लंबी भीड़ दिखी। सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसे कौन से कदम लिए होते जिनसे हालात थोड़े ज्यादा काबू में हो सकते थे। यही सवाल किया मैंने BBC संवाददाता जुबैर अहमद से।
कई लोग जो परेशान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिर में ये एक देश के लिए अच्छा काम हो रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ें इस वक्त उठा रहे हैं कई लोग उन्हीं में से ऐसा कहते सुने गए कि अगर सरकार की तैयारी सही से रहती तो ये जो कदम सरकार ने उठाया है कुछ कदम ऐसे उठाती जिससे कि ये जो अभी की स्थिति है वो ना रहती और सुविधाएं लोगों को दी जाती जैसे कि।
तो क्या है जुबैर साहब, क्या कदम हो सकते थे वो, अगर हम उसको 2, 3, 4, 5 में देखें?
देखिए bbchindi.com के पन्ने पे भी लोग जाके पढ़ सकते हैं जो हमने लोगों से बात करके कुछ ऐसे कदम के बारे में लिखा है। पहला तो ये है कि जो ATM का रिकैलिब्रेशन उसको करना चाहिए था। बहुत सारे जो 2 लाख से ज़्यादा ATM देश भर में हैं वो जो 500 और 1000 के नोटों के लिए जो ट्रे होते थे उसके लिए थे वो, लेकिन जो 2000 और जो नए 500 के नोट आ रहे हैं उसके लिए जो ट्रेज आने हैं उनमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, कुछ सॉफ्टवेयर भी चेंज करने की ज़रूरत है। खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि इसमें 21 दिन लग सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद 2-3 महीने लग जाएं। तो पहले तो कदम ये हुआ। उसके बाद 100 रुपये की जो के जो नोट्स हैं उसका जो ट्रे होता है वो छोटा होता है बाकी जो बड़े नोटों के मुकाबले में, तो 100 रुपये के जो नोट के ट्रे हैं वो भी बदला जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें कम मकदार में नोट जमा हो पाते हैं तो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तीसरा ये कि मोबाइल ATM और बैंक की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ग्रामीण इलाकों में, ख़ासतौर से जो मोबाइल बैंक और मोबाइल ATM ले जाना चाहिए था, सरकार को नहीं ले जा पाई।
जुबेर साहब, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने विनीत खरे की रिपोर्ट में भी सुना कि मामले ने अब खासा राजनीतिक रंग ले लिया है और काफ़ी इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन कुछ जानकारों की राय ये है कि जो विपक्षी दल है वो इस मामले पर कायदे से सरकार को घेर पाने में अभी तक उतना सफल नहीं रहा, क्या ऐसा ही है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बयानबाजी काफ़ी हुई है। हमने केजरीवाल साहब का बयान सुना, हमने मुलायम सिंह और मायावती के बयान भी सुने, हमने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री का भी बयान सुना ममता बनर्जी का, लेकिन एक्शन अब तक कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया कि राहुल गांधी आम लोगों की तरह उनके साथ जाकर कतार में खड़े हो गए, एक सिंबॉलिक जेस्चर ज़रूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब तक कोई इस पर स्ट्रैटेजी बनाकर सरकार को आड़े हाथ लेने में कामयाब नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि कल जो बैठक होने वाली है सारे विपक्ष दलों की, उसमें कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार के साथ भी इनकी बैठक होने वाली है। जो बुधवार से अगला सत्र शुरू हो रहा है संसद का, उसमें रणनीति क्या होगी, किन किन कई बिल पास कराने हैं सरकार को, तो विपक्ष को साथ लेने की कोशिश करेंगे। शायद विपक्ष कुछ जो कंसेशन मांगने में ख़ासतौर से राज्यसभा में तैयार हो, क्योंकि वहाँ उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन जो एक जनता का मूड को कैप्चर करने में जिस तरह से विपक्ष को कामयाब होना चाहिए था वैसा विपक्ष नहीं हो पाया है, और कई लोगों का मानना है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए।
नोटों की राजनीति पर बात कर रहे थे जुबैर अहमद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
अमरीकी सेना के खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज से स्वीडन के अभियोजक आज लंदन के इक्वाडोर दूतावास में पूछताछ कर रहे हैं। असांज पर 6 साल पहले स्वीडन में कथित बलात्कार के आरोप लगे थे। अमरीका प्रत्यर्पित किए जाने के डर से असांज पूछताछ के लिए स्वीडन नहीं गए थे, और 4 साल पहले उन्होंने लंदन में इक्वाडोर के इस दूतावास में शरण ली थी। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
स्वीडन के मुख्य अभियोजक लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज से बलात्कार के एक मामले में पूछताछ कर रहे हैं। जूलियन असांज पर 2010 में स्वीडन की एक महिला का रेप करने का आरोप है, जिसे वो नकारते रहे हैं। इक्वाडोर के अभियोजक जूलियन असांज से सवाल पूछ रहे हैं, और स्वीडन के अभियोजक इंग्रिद इसग्रेन सिर्फ असांज के जवाब सुन सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकते हैं। जूलियन असांज ने 4 साल पहले इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। उनका कहना है कि सेक्स मर्जी से हुआ था और रेप के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। ये आरोप जूलियन असांज की 2010 में स्टॉकहोम यात्रा से जुड़े हैं। वे एक लेक्चर देने गए थे। असांज के वकील पेर सैमुअलसन ने कहा कि असांज पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वो बहुत खुश हैं कि उन्हें अंततः स्वीडन के अभियोजकों के सामने अपना बयान देने का मौका मिल रहा है। वो इसका 6 साल से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सावधानी से खुद को इसके लिए तैयार किया है, और वो पूरी तरह सहयोग करेंगे। असांज पूछताछ के लिए स्वीडन जाने से इनकार कर चुके हैं। उन्हें डर है कि वहां से उन्हें अमरीका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और असांज के समर्थक पीटर टेशेल कहते हैं कि असांज हमेशा से पूछताछ के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि असांज को आरोपों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आरोप ही हैं। उनके खिलाफ अभी चार्जशीट नहीं है, और ये 2 लोगों के बीच का विवाद है। उन्हें आरोपों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वो तो खुद बीते 6 साल से इसके लिए तैयार हैं। स्वीडन के अधिकारी पूछताछ के लिए दूसरे देश भी जाते रहे हैं, तो फिर वो अब तक असांज से पूछताछ करने ब्रिटेन क्यों नहीं आए थे? जूलियन असांज की वेबसाइट विकिलीक्स ने अमरीकी सेना के इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े 50,000 से अधिक खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। स्वीडन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, लेकिन इक्वाडोर के दूतावास में शरण मिलने के बाद से वो ब्रिटानी पुलिस की पहुंच से दूर हैं।
जूलियन असांज से लंदन में हो रही है पूछताछ, और आज है सोमवार, और अब समय है आपकी राय का।
आपकी राय।
स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मेरे साथ आज मौजूद हैं चिट्ठियों के साथ और पत्री के साथ सुमिरन प्रीत कौर। सुमिरन, मैं चाहता हूं कि आज इन चिट्ठियों की शुरुआत जो हाथ की लिखी चिट्ठियां हैं ना, सामने नीले रंग का अंतरदेशी पत्र है, इससे करें।
जी बिल्कुल, ये चिट्ठी लिखी है लक्ष्मण दास शर्मा ने मंडलाना हरियाणा से, जो कहते हैं कि दिन भर में राजेश जोशी द्वारा पूर्व कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर से संडे के संडे में मुलाकात बहुत ही सराहनीय रही और जो राजेश जोशी जी ने सवाल पूछे थे उनका जवाब मणिशंकर अय्यर ठीक से नहीं दे पा रहे थे, मतलब मुश्किलें सामने ला रहे थे और दिन भर की ही तारीफ की है। चौरंग लाल ने झुंझुनू राजस्थान से, वो कहते हैं कि मुझे मणिशंकर अय्यर से जो साक्षात्कार था वो बेहद पसंद आया और अमेरिका के चुनावों पर ब्रजेश उपाध्याय की जो रिपोर्ट थी वो भी बहुत अच्छी लगी।
लक्ष्मण दास शर्मा जी, आपका ये पत्र हमें मिला और बहुत बहुत शुक्रिया कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया। विशेष रूप से आपने राजेश जोशी द्वारा जो मणिशंकर अय्यर का इंटरव्यू लिया गया था उसकी तारीफ की, दूसरी चिट्ठी में भी इसी की तारीफ है और राजेश जोशी का ये जो साक्षात्कार था मणिशंकर अय्यर से वो मैंने भी सुना था। तमाम बार कई बार जो है वो मणिशंकर अय्यर राजेश जोशी के सवालों में फंसते हुए नजर आए और एक नेता की कला होती है कि सवालों का बचाव कैसे किया जाए वो उन्होंने दिखाई और एक पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, उन्होंने सवाल पूछे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये बातचीत पसंद आई। रंगलाल जी, आपको ब्रजेश उपाध्याय की अमरीका चुनावों से रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी तो आपका ये जो संदेश है वो हम ब्रजेश उपाध्याय तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा और चिट्ठी?
हाँ, एक और चिट्ठी है यशवंत खामकर ने महाराष्ट्र से लिखी है। वो कहते हैं कि मैं रेहान फजल की विवेचना और निखिल रंजन का दुनिया जहां नियमित रूप से सुनता हूं और इसीलिए पत्र लिखना मैंने अब शुरू कर दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और अगर इन कार्यक्रमों को सुनने के बाद आपको लगता है कि पत्र लिखना चाहिए और आपने पत्र लिखने शुरू कर दिए हैं तो इसी तरह से पत्र हमें लिखते रहें और सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि सुझाव हो या फिर आलोचना हो वो भी जरूर लिखिए।
अब जब आपने आलोचना की बात की है तो थोड़ी सी शिकायतों की बात हो जाए। ये लिखा है गणेश प्रसाद हुजदर ने, मेल किया है और कहा है कि मैं बीबीसी का पुराना श्रोता हूँ, आप लोगों से एक बस छोटी सी शिकायत है कि मेरा एक महीना हो गया है और ईमेल शामिल नहीं किया गया है।
ईमेल शामिल नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से ये शिकायत आपकी दूर हो गई होगी क्योंकि आज आपका मेल शामिल हो गया है कार्यक्रम में। और रही बात, आपने ये लिखा कि मैं तारीफ करता रहता हूं तो कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप तारीफ करेंगे तभी आपकी चिट्ठी शामिल होगी, तो कुछ आलोचना कुछ सुझाव अगर हैं तो वो भी हो जाए।
फिर एक सुझाव है, ये सुझाव दिया है हमजा इकुबल ने, जो कहते हैं कि बीबीसी निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करता है लेकिन विद्यार्थियों के करियर संबंधी कार्यक्रम जो है उस पर विशेष कार्यक्रम नहीं आते हैं और मेरा निवेदन है कि करियर संबंधी कोई विशेष प्रस्तुति की जाए।
इकबल साहब, आपको याद होगा कि हमारा एक कार्यक्रम प्रसारित होता था करियर क्या करूं और उस कार्यक्रम को लेकर तमाम श्रोता हमसे ये भी कहते थे, अपने करियर के बारे में बातें पूछते थे, लेकिन हर कार्यक्रम की एक उम्र होती है, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। लेकिन जहां तक प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं की बात है, यदि आप हमारे सारे प्रसारण सुनते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर समसामयिक विषयों के जो सवाल जवाब होते हैं उसकी निश्चित तौर पर आपको जानकारी मिल जाती होगी। जहां तक करियर संबंधी कार्यक्रम की बात है तो आपका सुझाव एक बार फिर से हमारे पास है। और अब मुझे सुमिरन लगता है कि इतना वक्त नहीं है कि और चिट्ठियां या ईमेल हम शामिल कर पाएं।
एक छोटी सी शिकायत और है, क्या शामिल कर सकते हैं?
कर दीजिए।
तो वो लिखा है बीबीसी फैन बलजिंदर सिंह ने हनुमानगढ़ राजस्थान से, जो कहते हैं बीबीसी हिंदी ने यूएस से इलेक्शन तो ब्रॉडकास्ट किया लेकिन उसी में जो मोदी आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे मतलब जो करेंसी चेंज हुआ उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी उस दिन।
ऐसा नहीं है, हमारे जो सवेरे के कार्यक्रम थे उसमें पूरा कार्यक्रम जो है वो नरेंद्र मोदी की घोषणा थी उस पर था, तो लगता है कि वो कार्यक्रम आपने या तो आपने मिस कर दिया, लेकिन उस खबर को हमने पूरी तसल्ली बख्श तरीके से कार्यक्रम में जगह दी। आज भी आपने सुना होगा कार्यक्रम में इस खबर से जुड़े प्रसारण। तो अब और वक्त नहीं है सुमिरन, इसलिए श्रोताओं से हमें विदा मांग लेनी चाहिए। तो एक बार पता नोट कर लें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
और सभा समापन से पहले एक बार प्रमुख समाचार हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार।
पाकिस्तान का दावा है कि नियंत्रण रेखा के पास भिम्बर सेक्टर में भारतीय सेना की तरफ से की गई फायरिंग में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि आज शाम दिल्ली में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने विमुद्रीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और दक्षिणपंथी मीडिया प्रमुख को अपनी टीम में अहम भूमिकाएं सौंपी है। विश्व जलवायु संगठन ने कहा है कि 2016 का साल अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे गर्म साल रहेगा। पारदर्शिता के लिए काम करने वाली विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज से स्वीडन की एक महिला से बलात्कार के आरोप के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की सभा में इतना ही। अब से 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। नितिन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।